शांति। डायमंड हॉल में विराजमान आप सभी डायमंड्स का हम इस प्रश्नोत्तर सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे मध्य वरिष्ठ राजयोग शिक्षक आदरणीय रामनाथ भाई जी पधारे हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है, एक हाथ के ताली से आप भाई जी का अभिनंदन करेंगे। महान त्यागी, महान तपस्वी, तपस्वी मूरत, महान हस्ती रामनाथ भाई जी हमारे मध्य विराजमान हैं। 40 वर्षों से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। 35 वर्षों से समर्पित रूप से आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सेवाएं दे रहे हैं। देश विदेश में जाकर अनेक आत्माओं के आत्म दीप जगाने के आप निमित्त बने हैं। वर्तमान समय रिलीजियस विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर है और वरिष्ठ राजयोग शिक्षक है। अभी उनके मुखारविंद से आप आंसर्स भी सुनेंगे। उससे पहले हमारा नम्र अनुरोध है, आप में से एक बहन और एक भाई जो अपना अनुभव सुनाना चाहते हो वो कृपया स्टेज पर आ जाए। कोई एक भाई या कोई एक बहन, कोई सुनाना चाहते हैं हाथ उठाइए। तो जल्दी से ऊपर आ जाए स्टेज पर। और कोई माता भी सुनाना चाहती है तो कृपया वे भी आ जाए। और अनुभव में आपको चार बातें सुनाना है। आपका नाम बताइएगा, आप कहाँ से आए हैं, तीसरी बात आपने यहाँ आने के बाद क्या प्राप्ति आपने अपने जीवन में अनुभव किया, और चौथी बात क्या परिवर्तन करके लेके जा रहे हैं इस वरदान भूमि में आकर। इन चारों प्रश्नों का जवाब आप अपने अनुभव में सुनाएंगे, बहुत शॉर्ट में सुनाएंगे।
हेलो, ओम शांति। मैं कमल राम जी छत्तीसगढ़ बस्तर से आया हूँ। मुझे यहाँ पे राजयोग शिविर में बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैं पिछले 4 महीने से क्लास अटेंड कर रहा हूँ जगदलपुर में राजयोग शिविर का, और ये रिफ्रेशर कोर्स है। और यहाँ आके बहुत अच्छा अनुभव किया। जो 5 विकार दादी जी ने और सब जितने भी जो बताए हैं उनको हमको अठाना है। परिवर्तन मतलब संयम, संयम की भावना आ गई और ईश्वर पे ध्यान लगाना है और सबको जगाना है।
ओम शांति। मैं सत्या विद्यार्थी, हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो एक छोटा सा सिटी है वहाँ से आई हूँ। मैं पिछले लगभग 6-7 महीनों से सेंटर पे जाती रही हूँ। इससे पहले भी मैंने कई धार्मिक जगहों पे गई, कई जगह से मंत्र भी लिए, लेकिन जो सुकून यहाँ मिला उसका मैं वास्तव में शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मैं इतना बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके मैंने अथाह शांति का अनुभव किया। मेरा यहाँ से वापस जाने को मन नहीं कर रहा कि मैं वापस जाऊँ यहाँ से, ऐसा मन लगा है, इतनी शांति मिली है। मैं जो लेसन लेके जा रही हूँ वह ये है कि जो यहाँ एक बात बार बार कही जाती है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो अब होगा वो भी बहुत अच्छा होगा, ये एक लेसन लेके जा रही हूँ। और इससे वास्तव में हम लोग अपने जीवन का तनाव बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।
अभी समय के अभाव के कारण हम सुनना तो सभी का अनुभव चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण हम सभी का नहीं सुन पाएंगे। अभी प्रश्नोत्तर सेशन हम आरंभ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम भाई साहब से पूछना चाहते हैं, अगर कोई आत्मा अपना अधिक पुरुषार्थ करे तो क्या उसका अगले जन्म का रोल बदलेगा, मना अच्छा होगा।
ओम शांति। देखो अच्छा होने वाला है तभी तो कहते हैं पुरुषार्थ करो, अगर अच्छा होने वाला नहीं है तो पुरुषार्थ करके क्या मिलेगा। तो अभी संगम पर भाग्य विधाता स्वयं आके भाग्य बनाने की विधि बताता है, उस विधि के अनुसार अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो हम प्रारब्ध पा सकते हैं। अगर उसके बाद भाग्य विधाता नहीं है, अगर आप कितनी भी मेहनत करो तो आप अपना भाग्य बना नहीं सकते हो, विधि चाहिए। तो विधि कौन सुनाएगा, तो स्वयं विधाता आके इस संगम पर सारे कलप के अंदर। तो ये संगम का पीरियड है, कलयुग का अंत, सत्युग का स्टार्टिंग, इसके बीच में स्वयं भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा आकर के मनुष्य को, मनुष्य आत्माओं को ज्ञान देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, तो आप अपना भाग्य बना सकते हो। तब कहता है कि अगर इस विधि पूर्वक आप तपस्या करते हो, जो पहले किया हुआ पाप है उसको आप मिटा सकते हो, इसलिए उसको कहते हैं पाप कटेश्वर हो, ही इज ए प्यूरिफायर। वो कौन है, पतित आत्मा को पावन करता है। तो ये विधि बताता है, नहीं तो शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। तो विधि कौन सी, किसने सिखाया तपस्या करने की, भगवान ने नहीं सिखाया। तो अब आकर के भगवान ये सिखाता है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि पतित आत्मा है, पतित शरीर नहीं है। अगर आप शरीर समझ के कितना भी पूजा पाठ कुछ भी करते हो तो आत्मा के पाप नहीं मिटेगा। इसलिए कहते हैं अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज, तब जब तक आपने महसूस नहीं किया मैं बीमार हूं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो यहां महसूस करना आत्मा के अंदर पाप है। अगर आत्मा अपने को समझकर परमात्मा को याद करते हो तो विधि है कैसे तपस्या करना चाहिए, कैसे भगवान से योग लगाना चाहिए। सिंपल एक एग्जाम्पल बताता हूं, आप जानते होंगे एक कागज आप धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, क्या वो कागज जलेगा। वही सूर्य की किरणें, वही कागज, एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, सूर्य की किरणें ग्लास के द्वारा एक जगह पर एकाग्र होती है, एक ही मिनट के अंदर उस कागज को जला सकते हो। सूर्य भी वही, किरणें भी वही, कागज भी वही, सिर्फ विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो वो विधि कौन सिखाता है, तो स्वयं विधाता आके सिखाता है। उस विधि से अगर आप पुरुषार्थ करते हो, अभ्यास करते हो, तो प्रारब्ध बना सकते हैं, भाग्य बना सकते हो, तब उसको कहते हैं भाग्य विधाता।
अब दूसरा प्रश्न है, तामसिक भोजन क्यों नहीं खाना चाहिए, नशा एवं स्मोकिंग करने से क्या होता है।
सिंपल आप पूछेंगे तामसिक किसको कहते हैं, खास प्याज लहसुन ये दो, तीसरी मूली भी है, लेकिन आपको जानना चाहिए प्याज लहसुन तो वनस्पति है, खेती में पत्ते गोभी बनती है ना, तो भी पत्ता पत्ता होता है, प्याज को भी पत्ते पत्ते होते हैं, तो क्यों नहीं खाना चाहिए। मंदिर में भगवान को भोग क्यों नहीं लगाते हैं, तामसिक क्यों कहा आपने। हाँ इसको भी जानना चाहिए। देख लो आप आलू भी जमीन में उगता है, इतना नजदीक पकड़ के काटो तो कुछ भी नहीं होता है, प्याज इतनी दूर पकड़ के काटो तो भी आंखों से आंसू आते हैं, पानी खींच के निकलता है। प्याज लहसुन और मूली, प्याज और लहसुन के अंदर सल्फ्यूर करके एसिड है, सल्फ्यूर हिंदी में तेजाब कहते हैं, जो चांदी सोना काली होती है तो कैसे धोएंगे, तेजाब से धोते हैं। बाथरूम की टाइल्स काली होती है कैसे धोते हैं, तेजाब एसिड से धोते हैं। वो एसिड 100% प्याज और लहसुन में है, 25% किसमें है, मूली के अंदर है। तो ये अगर खाते हो ये तामसिक है, आग है, हीट है, जैसे आप तेजाब एसिड देखो एकदम हीट है, तो वो हीट खाएंगे, हमारा पेट शीतल होना चाहिए, इसलिए छाछ पीते हैं, पानी पीते हैं। तो ये गर्म खाएंगे तब कहते हैं तामसिक क्रोध आता है। तो जानना चाहिए प्याज और लहसुन में क्या चीज है, वो खाने से क्या होता है और ये किसको खाना चाहिए। तो इसके लिए प्याज लहसुन तीसरी, दूसरा एक है मिर्ची खाना चाहिए। हां खाना चाहिए, हरी मिर्ची खाना चाहिए, विटामिन सी है। लाल मिर्ची ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्यों? लाल मिर्ची का जो सिलका देख लो आप, सूखने के बाद प्लास्टिक जैसा होता है, अगर उसको पानी में डालो तो गलता नहीं, देखना मेल्ट नहीं होता है। अगर पाउडर करके अचार में भी डालते तो भी वो मेल्ट नहीं होता है, प्लास्टिक जैसा होता है। तो बहुत कुछ अचार में डाल के खाते हो तो आंतड़ियों के अंदर चिपक जाता है, उसके पीछे तीखापन है, तो जलन होता है, अल्सर का कारण बन जाता है। वही टमाटर का जो सिलका है वो भी प्लास्टिक है, वो भी चिपकता है, लेकिन उसके पीछे तीखापन नहीं है, थोड़े समय के बाद निकल जाएगा। तो मिर्ची खराब नहीं, हरी मिर्ची खाओ, खाने के बाद मेल्ट हो जाता है, विटामिन सी है। लेकिन लाल मिर्ची जो बहुत खाते हो वो उससे अल्सर हो सकता है। कौन सी चीज कितनी खाना चाहिए, किसके लिए खाना चाहिए, हर चीज की विधि जानी चाहिए। कोई भी चीज खराब नहीं है, उस जगह के लिए उस समय के लिए वो चीज चाहिए। तो हमें प्याज लहसुन खाने की जरूरत नहीं है, पहले से गर्मी है और गर्म करने की जरूरत नहीं है। जहां बहुत ठंडी है वहां गर्म गर्मी चाहिए, तो उसके लिए अलग, हमारे भारत के अनुसार इस वातावरण के लिए ये जरूरत नहीं है, तब इसको तामसिक कहा। ठीक है मंजूर। और इसके साथ व्यसन की भी आया, तो तंबाकू शराब खाने के लिए है, तंबाकू भी खाने के लिए है ना, शराब भी पीने के लिए बनता है। तो आप सोचो मनुष्य तंबाकू क्यों खाता है, शराब क्यों पीता है, पूछना चाहिए अपने आप से, मन में गलत विचार चलते हैं। तो तंबाकू नशा करने से शांत हो जाए, नींद आ जाती है, शराब पीने से बहुत नींद नहीं आती, गलत विचार चलते हैं। तो क्या करें, शराब पीने से शांत हो जाता है एक दो घंटा चार घंटा, उसके लिए मनुष्य पीता है। तो मन में गलत विचार चलते तो क्या करना चाहिए, कोई उपाय है? तब मनुष्य उपाय तंबाकू, उसको कहते हैं मन को दमन करो। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय मन में दमन नहीं करो, कब तक पकड़ के रखेंगे आप, मन को कंट्रोल नहीं करो, मन को समझाओ। तो कौन समझाएगा, बच्चे बहुत गलत काम करते हैं तुरंत मारते नहीं है, समझाते हैं। तो मन को कौन समझाएगा, किसी के पास जवाब है? अभी आपने दो तीन दिन ज्ञान सुना, मन को कौन समझाएगा, कौन बताएगा, हाथ उठाओ। हां हां, ये दुनिया में अभी तक नहीं पढ़ाया, साइंस ने पढ़ाया, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? तब कहा औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है, गुस्सा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, स्वयं को कौन पढ़ाएगा, तो बुद्धि है। तो भगवान ने आकर के ज्ञान दिया, बच्चे आत्मा के पास तीन शक्तियां है, मन है, विचार करता है, ये विचार अच्छा ये विचार गलत है कौन बताता है, बुद्धि। बुद्धि निर्णय करती है, ये मन में जो विचार चल रहा है ये ठीक नहीं है, तो अपने मन को समझाता है। तो कैसे समझाएगा, तो उसके लिए ज्ञान चाहिए। अगर रोज ईश्वरीय ज्ञान सुनते हो जो भगवान स्वयं आके सुनाता है, तो वो ज्ञान अपने आप को समझाओ, तब कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। औरों को परिवर्तन करने नहीं जाओ, पहले स्वयं को करो, सेल्फ प्रोटेक्शन। बहुत बरसात पड़ती है, आप बरसात को रोक नहीं सकते हो, आप छाता लेके जाओ, अपने को बचाओ, सेल्फ प्रोटेक्शन। तो ये ज्ञान वो चाहिए जिसने हम सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी समझ में नहीं आया, समझ कहां है, बुद्धि के अंदर है। सुनने के बाद जो समझ में आया, तो बुद्धि अपने आप को पढ़ाती है, नहीं मुझे इनको देखकर ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। तो अपने आप को सुधारो, स्वयं को सुधारने का मेरा अधिकार मेरे ऊपर है, मेरे अधिकार दूसरों पर नहीं। लेकिन आज मनुष्य जैसे टीवी के सामने बैठता है रिमोट लेकर के, ये चैनल ठीक नहीं चेंज किया, जैसे चैनल को चेंज करता ऐसे औरों को भी चेंज करना चाहता है। लेकिन एक इटर्नल सत्य है कि हम औरों का पार्ट हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हरेक का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है। उसको जब समझ में आएगा कि ये ठीक नहीं है, उसने अपने आप को समझकर अपने आप को परिवर्तन करना है। हम चाहते इनको मुझे चुप करना है, परिवर्तन करना है, नहीं, तब संघर्ष होता है। तो इसके लिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार परमात्मा आकर के ये ज्ञान देता है, बुद्धि नेत्र तीसरा नेत्र देता है और समझाता है कि वो जो सुनते हो याद रखो और अपने मन में अपने आप को पढ़ाओ तो मन अपने आप परिवर्तन होगा। जिसके पास ये दवाई नहीं है तो शराब पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, मन को दमन करना चाहते हैं। कब तक दमन करेंगे आप? मन को दमन नहीं करो, डू नॉट सप्रेस योर माइंड, डू नॉट कंट्रोल योर माइंड, बट कन्विंस योर माइंड। मन को कभी दमन नहीं करो, मन को कंट्रोल नहीं करो, मन को समझाओ, समझा करके परिवर्तन करना चाहिए।
शांति। अभी ये दूसरा प्रश्न है, 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करने के लिए जाना चाहिए या केवल शिव बाबा को घर बैठकर याद करने से पाप नष्ट हो जाएगा?
कौन बताएगा जवाब? 12 ज्योतिर्लिंगम भक्ति, उसके अंदर आत्मा तो नहीं है ना, चैतन्य तो नहीं है। हाँ, जिसको ये ज्ञान पता नहीं तो भक्ति करो, खराब नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं तो दूध पीते हैं, दूध पॉइजन नहीं है, बड़े होने के बाद भी दूध पी सकते हैं ना, सब्जी रोटी भी खा सकते हैं, लेकिन दूध में जितनी ताकत है वो ताकत बड़े होने के बाद उतना नहीं है, उतना मिलता नहीं है, इसलिए सब्जी रोटी खानी पड़ती है। नहीं तो दूध एक ही यार, सदा ही दूध ही लेते रहो, तो बच्चों का आहार दूध है। जब हमको ये ज्ञान पता नहीं था तो हम भक्ति करते थे, ठीक है। अब ज्ञान समझ में आया कि आत्मा को शक्ति चाहिए, पाप मिटाना है, तो पाप मिटाने वाला कौन? तो सर्वशक्तिवान परमात्मा। आत्मा के अंदर पाप है तो उसके शक्ति से ही पाप मिटेगा। तो अगर पाप मिटाना चाहते हो तो आत्मा समझ के चैतन्य परमात्मा को याद करेंगे तो पाप मिटता है। अगर आप भक्ति जितना भी करो, तब कहा चाहे लाख करो चतुराई लेप मिटे ना रे भाई, क्यों? किसकी पूजा करते? उसके अंदर चैतन्य आत्मा तो नहीं है, शक्ति कौन देगा? शक्ति चैतन्य परमात्मा आके देता है। तो पाप मिटाना चाहते हो तो परमात्मा को याद करना चाहिए। अगर आपके परिवार के अंदर रस्म है, रीति है, मंदिर में जाना पूजा करना, करो, गलत नहीं है, लेकिन जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, ठीक है।
कार्य क्षेत्र में साथ में कार्य करने वाले हम जिन्स का व्यवहार अगर ठीक ना हो तथा शांति के मार्ग से हटाने वाला हो या हमें बहुत इरिटेट करे या फ्रस्ट्रेट करे, ऐसे में हम क्या करें, अपने आप को मैनेज कैसे करें?
देखो, सामने पहले सुनाया स्व परिवर्तन, सामने वाला कितना भी कठोर हो तो वो उसका स्वभाव संस्कार है, उसको हम उसको परिवर्तन करने के लिए हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है। हाँ, अब आता है कि वो अपना काम करेगा, गुस्सा करता है, दुख देता है, परेशान करता है, आप उससे बचने के लिए उपाय सोचो। तो अगर आप रोज ज्ञान योग करते हो, ज्ञान से समझ में आता है कि मैं उसको परिवर्तन नहीं कर सकता हूं, मुझे चुप रहना चाहिए, मुझे सहन करना चाहिए, वो बोलते बोलते चुप हो जाएगा, जवाब देंगे कि आग के अंदर एक बूंद तेल डालो और बढ़ेगा, लेकिन मुझे जवाब देना नहीं, चुप करना चाहिए, अपने आप को समझाने के लिए ज्ञान चाहिए। लेकिन ज्ञान होने के बाद भी ब्रेक लगता नहीं है तो पावर चाहिए। तो आप रोज परमात्मा को सवेरे 5-10 मिनट, शाम को 5-10 मिनट रोज अगर मेडिटेशन करते हो तो शक्ति मिलती है। सामने वाला गलत कर रहा है, मन में विचार आता है तो मन को समझाते हो, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने बोलने से वो चुप रहेगा नहीं, मेरे पास वो पावर नहीं है, तो मुझे अपने आप को चुप रहना चाहिए, सहन करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। ये करेंगे आप, ये करते करते सदा ऐसे नहीं करना है, थोड़े समय चुप रहो, फिर उसके बाद वो शांत हो जाता है, फिर उसको आप उनके प्रश्नों का जवाब दे दो। आपको सदा मुझे दबके चलना है, मुझे ही झुकना है, नहीं, थोड़ा समय के लिए पॉज, जब वो शांत हो जाएगा उसके बाद आपको जो जवाब देना हो 5 मिनट के बाद दे दो। क्यों? तवा गर्म है, ठंडा पानी डालो तो भी उछलेगा, तवा ठंडा है, गर्म पानी डालो कुछ नहीं होगा। तो जब वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो उसका दिमाग गर्म है, आप कितना भी प्यार से भी बात करो वो सुनता नहीं है, तो हमें चुप रहना चाहिए। फिर भी आप कहते हो भाई जी क्या हम उनको परिवर्तन कर सकते हैं? हां, ये भी संभव है, अगर आप ऐसे रोज मेडिटेशन करते हो, ऐसी शक्ति अपने के अंदर भरते हो, आपके पास पता है मेरे मन में एक भी गलत विचार नहीं चलता है, मेरे अंदर पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे पता चला? किसी को कैंसर की बीमारी है, 3 साल तक कुछ पता नहीं चलता है, कैसे बताएंगे आप? तो इस दूध में पानी है कैसे बताते हो? साइंस ने थर्मामीटर बनाया, बीमार वालों को एक्सरे निकाल के दिखा सकते हो, क्या पुण्य आत्मा पाप आत्मा दिखा सकते हो? हां, देख सकते हो। जब आप रात को आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कहां से आते हैं? तो एक चीज जानना चाहिए कि ये ज्ञान का पूरा निचोड़ एक शब्दों में, आत्मा जब इस शरीर में जन्म लेती है, अंतिम श्वास तक इस शरीर के द्वारा अब जो भी कर्म करते हो, हर कर्म आपके अंदर रिकॉर्ड होता है। आज तक आपने इस शरीर में रहकर क्या क्या कर्म किया है तो वह स्वप्नों में दिखाई देता है, तब हम कहते हैं पुण्य आत्मा और पाप आत्मा। अगर आप में से कोई कहते हो हमारे अंदर जब हम सोते 5 विकारों के स्वप्न नहीं आते हैं, पुण्य आत्मा है। अगर 5 विकार के काम क्रोध लोभ मोह के विचार आते हैं, स्वप्न कहां से आए हो? हमने कर्म किए हुए हैं, अंदर भरे हुए हैं, और जैसे गीत भरा है ऐसे आवाज आता है। मन में गलत विचार कहां से आए? बाहर से आए, हमने ऐसे कर्म भरे हुए हैं। पहले स्वप्न बताता है, फिर मन बताता है, फिर कर्म आता है। तब प्रश्न आया हमारे अंदर, मैं कौन सी आत्मा हूं, पुण्य आत्मा हूं या पाप आत्मा हूं? अंदर पाप है। अगर ऐसी तपस्या करके अपना पाप मिटाते हो और शक्ति जमा करते हो, तब आपके संकल्प से औरों के संकल्प को आप परिवर्तन कर सकते हो। उसको कहा श्रेष्ठ वृत्ति से अशुभ, श्रेष्ठ वृत्ति से अशुभ वृत्ति को भी परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन वो कभी, जब अपने अपना पाप को मिटाकर एक्स्ट्रा शक्ति जमा किया है, पुण्य आत्मा है, उसकी शक्ति औरों के ऊपर वृत्ति को उनके विचार को परिवर्तन कर सकते हो, लेकिन इतना तो अभी हम तैयार नहीं है। तो अभी दूसरों को परिवर्तन करने के जगह पर मुझे चुप रहना है। हाँ, वो गुस्सा करेगा। अगर आपने महाभारत सुना हो तो क्यों, महाभारत में आता है सभी के सभा के बीच में भीष्म पितामह सारे राजा है सारे परिवार के बीच में दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा है, सारे परिवार में से किसी ने रोका उनको, सिर्फ द्रौपदी ने श्री कृष्ण को बुलाया, भगवान को याद किया, भगवान भी आया, भगवान ने द्रौपदी को मदद किया, लेकिन दुशासन को रोका। दुशासन को रोकना चाहिए था ना, नहीं, वो तो अपना काम कर ही रहा है। तब कहा ये महाभारत के अंदर भी आया, गुस्सा करने वाला वो करेगा, आप उसको रोक नहीं सकते हो, वो अपना कर्म कर रहा है, आप स्वयं को रोको। आपका अधिकार स्वयं पर है, लेकिन हम क्या कहते हैं, इनको चेंज करना है, इनको रोकना है, ये पावर अभी तक हमारे पास नहीं है। भगवान ने भी आकर दुशासन को रोका नहीं, जिसने बुलाया, द्रौपदी ने बुलाया, द्रौपदी को मदद किया। अगर आप भगवान को याद करते हो तो आपको शक्ति मिलती है। भगवान इसको रोको नहीं, वो बुलाएगा तो उसको रोकेंगे हम, वो अपना काम करेगा। हर एक को अपना कर्म करने का अधिकार है, भगवान किसी के कार्य क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करता है, हर एक को अपना अधिकार है। अच्छा करो तो अच्छा पाएंगे, गलत करेंगे तो गलत पाएंगे, तो उसके बीच में भगवान नहीं आता है। अगर आप बुलाते हो, मदद मांगते हो, हिम्मत है बच्चे, अगर आप हिम्मत करके एक कदम रखते हो तो भगवान हजार कदम गुना आपको मदद करेगा। जो बुलाता है, जो मदद चाहता है उसको, तो इसके लिए औरों को परिवर्तन करने नहीं जाओ। अगर वो गुस्सा करता है करने दो, और आप भगवान की श्रीमत के अनुसार चलते हो तो भगवान ने कहा, शिव बाबा ने कहा, बच्चे मेरे श्रीमत पर चलते हो तो मैं जिम्मेवार हूं, मैं आपका रक्षक हूं। अगर आप अपने मत से करते हो उस कर्मों का फल भी आपको भोगना पड़ेगा, आप जिम्मेवार। तो आप सोचो संसार में रहकर हमके किसके आधार से चलना चाहिए, किसके मत पर चलना चाहिए, भगवान के मत पर चलना चाहिए, पर मत पर चलना चाहिए, मन मत पर चलना चाहिए, किसके मत पर चलना चाहिए, वो आप निर्णय करो। तब भगवान ने कहा मेरे श्री मत पर चलते हो तो मैं जिम्मेवार में। और गीता में भी देखो अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मैं जो कहता हूं मेरे अनुसार चलो तो मैं आपका रक्षक हूं, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, मैं जिम्मेवार हूं, आपके ऊपर कोई भी पाप नहीं लगेगा। तो कर्म करने गुस्सा नहीं करो, ये आपको किसने कहा, मनुष्य ने नहीं कहा, स्वयं भगवान आके कहता है। अगर उसके बाद आप कहेंगे भाई जी हम चुप रहे, कलो पत्थर मारेगा, हां मारे दो, भगवान ने कहा है वो रक्षा करेगा आपकी, तो वो निश्चय चाहिए। अगर आप भगवान के मदद पर इच्छा श्रीमत के अनुसार चलते हो तो वो जिम्मेवार है। लेकिन हम सदा चाहते इनको परिवर्तन करना है, इनको ठीक करना है, नहीं, अपने को समझाओ, अपने को परिवर्तन करो, तो ये ज्ञान चाहिए। ठीक है,
जैसे आप कहते हैं कि कर्मों में परमात्मा इंटरफियर नहीं करते, फिर परमात्मा का रोल क्या है?
हाँ, बहुत अच्छी बहन जी ने, अच्छा हमने भी पढ़ा था कि भगवान क्या कहता है, भगवान का नाम है भाग्य विधाता, गाइड है, समझाता है। जैसे माँ बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हो चोरी नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, समझाते हैं, फिर भी वो करता है तो वो पाता है। तो यहां भी भगवान मार्गदर्शक है, गॉड, भगवान कौन है, रक्षक है, गाइड करता है, समझाता है, करना नहीं करना आपके हाथ में है। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं, यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन। एक क्रूर प्राणी को आप प्यार करो, वो कभी भी आपको भूलेगा नहीं, लेकिन एक आप कहेंगे इनको बुद्धि नहीं है, प्यार करो एक दिन आपको लूट के चला जाएगा। क्यों? मनुष्य को बुद्धि है, उसको कोई पढ़ा नहीं सकता है। तो हर एक मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ मनुष्य है कि उसके पास बुद्धि है, वो स्वयं के निर्णय से कर्म करेगा। तो भगवान एक दफा दो दफा समझाता है, करना नहीं करना आपके हाथ में है, जैसे करेंगे वैसे पाएंगे, ये कर्मों का सिद्धांत है।
आपने कहा कि भगवान हमें गाइड करते हैं, लेकिन वो मदद भी तो करता है। हाँ, तो वो इसका मतलब क्या है?
गाइड करता है, गाइड पर जो सुनता है, जैसे मैंने कहा सुनता है तो मदद करता है। अगर आपको उदाहरण चाहिए, रामायण अगर आपने पढ़ा हो तो रामायण के अंदर आता है कि श्री राम को लंका जाना था सीता को लाने के लिए, तो रामेश्वर में समुद्र के किनारे पर श्री राम तपस्या करता है, समुद्र देवता को की विनंती करता है मुझे रास्ता दे दो। तो तपस्या करने बैठता है तो पानी आके श्री राम को ही ले जाता है, तो क्रोधित हो जाता है और एकदम बाण मारने के लिए तैयार होता है, तीर मारने के लिए। तो समुद्र देवता प्रसन्न होता है और कहता है, हे विधाता, ऐसे कई विधान लिखा नहीं है, कोई भी आओ तो पानी सुखा दो। आप भगवान हो गया तो भी आपको कायदे अनुसार चलना है। लॉ मेकर कैनॉट ब्रेक द लॉ, कायदा बनाने वाले को भी कायदे पर चलना है, कायदा औरों के लिए नहीं। आप विधाता हो, आपको भी कायदा, आप मेरे पर अन्याय नहीं कर सकते हो, बाण नहीं छोड़ सकते हो। तब श्री राम ने कहा, मैं क्या करूं? हां, आप मेरे से मदद मांगो, मैं आपको मदद कर सकता हूं। आपका नाम लेकर अगर कोई पत्थर मेरे में डालेगा तो मैं तैराऊंगा, मदद करूंगा, लेकिन आप मेरे पर कायदे अनुसार, कायदे के विरुद्ध तीर छोड़ नहीं सकते हो। मदद मांगो तो मैं आपको गाइड करता हूं कि आपका नाम लेकर के पत्थर डालेंगे तो तैराऊंगा। तो यहां भी भगवान कहता है, मेरे श्रीमत के अनुसार कर्म करते हो, अगर कुछ भी हो जाए मैं जिम्मेवार, मैं रक्षा करूंगा, मैं आपको उस समय मदद करूंगा, लेकिन मेरे मत पर चलो। मदद भगवान करता तभी जो उसके मत पर चलता है। मदद भी कैसा, ऐसा सोना नहीं देता है, आपको कहता है इस रास्ते पर चलो। वो भी आपको चाहिए वो भी बताता हूं, मदद भी कैसे करता है। अगर रामायण अगर पढ़ी हो तो एक बार वाल्मीकि रामायण में आता है, श्री राम वनवास में अकेला युद्ध पर जाता है, पंचवटी में जब था, तो रावण के सैन्य के सामने जाता है तो रावण का सैन्य उसके पर हावी हो जाता है, तब उसके सारे अस्त्र खत्म हो जाता है और रावण का सैन्य उसके पर हावी होता है, तो क्या करूं प्रश्न आ जाता है। एकदम आकाशवाणी होती है, हे राम, आपके पास यह अस्त्र है, यह अस्त्र छोड़ दो। तो वो अस्त्र छोड़ता है, सब मूर्छित हो जाते हैं। ये आकाशवाणी कौन? भगवान। आपको भी अगर भगवान के श्रीमत पर हर कदम पर चलते हो, संसार में चलते कोई ऐसी मुसीबत आ जाती, मैं क्या करूं, तो भगवान आपको आकाशवाणी मदद करेगा, बच्चे ये करो, ऐसा कोई आकर के आपका काम करके जाएगा, कौन किसने किया वो पता ही नहीं आपको। तो भगवान व्यक्ति के द्वारा, किसी न किसी द्वारा आपका काम करेगा, आपको मदद करेगा, लेकिन उसका जो उसके श्रीमत पर चलते हैं। हिम्मत है बच्चे, मदते खुदा तब मदद करता, अगर उसके मत पर नहीं चलते हो भगवान आप मदद करो। नियम है, विधि है, खेती में एक बीज बोलो तो 50-100 दाना लगता है, बिना बीज बोए हुए कुछ उगेगा नहीं, विधि है।
गीता ज्ञान में दर्शाया गया है, अर्जुन को योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अधर्म का साथ दे रहे अपने दादा भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर सुलाया, क्या ये पोते के लिए अच्छा व योग्य कर्म है?
मैंने महाभारत भी अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, तो इसके अंदर दृष्टांत ये है, एक कर्मों की सारे महाभारत के अंदर एक बहुत अच्छा दृष्टांत है कर्म फिलॉसफी के लिए, कि संसार में रहते हुए कर्मों का, जो हम कर्म करते उसकी गति सदगति क्या होती है, उसके लिए एक जवाब है ये। श्री गीता के आज महाभारत के अंदर रहता है, तो का क्या कहा कि दान करते समय पात्र को देख के दान करना चाहिए, यहां आता है। तो आप कहेंगे रस्ते पर चलते हुए कोई भी मिला, आपने किसी को 10 रुपया दे दिया, आपने दान किया, उसने जाके शराब पिया, तंबाकू खाया, उसका फल आपके ऊपर लगेगा। तो दान करते समय पात्र को देख के दान करना चाहिए। तो इसके लिए यह दृष्टांत आया महाभारत के अंदर, भीष्म पितामह को अंत में तीर की शैया पर क्यों सुलाया? तब तीर की शैया पर जब सुलाया तब उन्होंने पूछा श्री कृष्ण से कि बचपन से आज तक मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया है, मुझे आज मेरे लिए कोई शैया नहीं मिली, तीर की शैया पर सुलाया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि बचपन में आप घोड़े गाड़ी चलाते थे, रथ के चक्के के नीचे सांप आ गया, लेकिन आपका मनसा स्वच्छ थी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, तुरंत रथ को रोका, तीर उठाया, सांप को बचाया, सांप को उठा करके बाजू में फेंका। रस्ते के बाजू में कांटे के झाड़ होते हैं, वो कहां गिरा? कांटे के झाड़ पर गिरा। उनका लक्ष्य था हिंसा नहीं करनी चाहिए, उठा के बाजू में फेंक दिया। हमारा लक्ष्य दान करना चाहिए इतना ही, लेकिन पात्र को देख के दान करना चाहिए, ये भूल गए। उसने हमने दान किया, उसने उसका दुरुपयोग लिया तो उसका फल मुझे। तब भीष्म पितामह को कहा जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। तो ये कर्मों की गुह्य गति है, कर्म करते समय आगे पीछे दाएं बाएं सोच समझ के कर्म करो, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। आप कहेंगे उन्होंने कहा मैंने बचपन से आज तक किसी को दुख नहीं दिया है, लेकिन ये दुख जानबूझ के नहीं किया, लेकिन समझ नहीं थी, बचाना इतना ही पता है, लेकिन बचाने के लिए उठा के कहां फेंका आपने, वो भी आपको जानना है। तो संसार में रहते हुए अच्छी भावना से किया हुआ कर्म भी कर्म बंधनों में बांधता है। तब ज्ञानी तो आत्मा जो है वो चारों दिशा सोच समझ के कर्म करता है, तब कर्म बंधनों से मुक्त होता है। तब कहा ज्ञानी तो आत्मा बनो।
भाई साहब आप हमें बताओ, बाबा कहते हैं आप हमें यहाँ सिखाया जाता है कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, लेकिन जब हम बोलते हैं ना भूल जाते हैं, क्या करें?
हाँ, करते सुनते सुनते, जैसे देखो आप देखा शालिग्राम कैसे बनता है, पत्थर साधारण पत्थर होता है, मूर्ति कैसी बनी? अपने आप तो नहीं बनी, पहले पत्थर था, उसको तराशते हैं, थोक थोक कर करके फिर मूर्ति बनती है। ऐसे रोज आप सत्संग से सत गति होती है, रोज ज्ञान सुनते रहेंगे 5 मिनट, 24 घंटा आपके पास है, 23 घंटा आप जो चाहे करो, सवेरे शाम 5-10 मिनट जाकर के अगर सत्संग करते हो, अच्छी बात सुनते हो, सुनते सुनते समझते समझते धीरे 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 हमारे अंदर परिवर्तन होता है। स्लो एंड स्टडी मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक ही दिन में नहीं है, धीरे धीरे होता है। अभ्यास जरूरी है, अभ्यास के बिगैर हमारे अंदर परिवर्तन नहीं होगा, चमत्कार नहीं है, लेकिन मनुष्य चाहते चमत्कार होना चाहिए, नहीं, चमत्कार अल्पकाल के लिए है और विधि पूर्वक अभ्यास सदाकाल के लिए। अगर आप सदाकाल ऐसे सुनते करते रहेंगे ज्ञान, तो धीरे धीरे हमारे आदत के अंदर परिवर्तन आएगा।
कलयुग के लोग हर समय पाप करते हैं, तो सभी का जन्म क्या सतयुग से अवश्य ही कैसे हो सकती है? और हमें ये भी बताइए जीव जंतु पशु प्राणी की गति कैसे होती है?
जैसे एक स्कूल में 100 बच्चे होते हैं, सभी फर्स्ट क्लास तो नहीं आते ना, एक या दो, सभी को एक ही पढ़ाई है, तो यहां सभी को ज्ञान सुनाया गया है, अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, सबको सुनाया। उसमें से 5% थोड़े 1-2% ज्ञान को समझकर पढ़ाई करेंगे, ध्यान लगाएंगे, अपने पाप को मिटाएंगे, अपने को प्योर बनाएंगे 100%, वो सत्युग में जाएंगे। जो करके 80% अपना पाप मिटाएंगे तो त्रेता युग में आएंगे। जो ज्ञान थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके 50% अपना पाप मिटाएंगे तो द्वापर युग में आएंगे। जो ज्ञान सुनने के बाद भी अभी सुना गुस्सा नहीं करना चाहिए तो भी बाहर होते ही कल गुस्सा करेंगे, ज्ञान सुन करके भी कोई परिवर्तन नहीं, तो तब कहा पुनः दोबारा यही कलयुग में आना पड़ेगा। तो जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, अगर पढ़ने के बाद भी ज्ञान सुनने के बाद भी नहीं किया तो जैसे थे वैसे रहेंगे ना। तो इसके लिए कहा सुनो समझो और उसको आचरण में लाओ। और पता है स्कूल में जगह 100 बच्चे हैं, सभी फर्स्ट क्लास में नहीं आते हैं। पांडवों में भी 5 ही पांडव थे, कितने थे भाई? 5 ही निकले। तो अच्छे जो इतने आप में भी से देखो, इतने बाबा भगवान के बच्चे हो सभी, कहते हो कोई भी रावण का बच्चा कहते हो? नहीं, हर एक कहता मैं भगवान का बच्चा हो, है ना, हर एक के अंदर है। किसके हो? भगवान के है, भगवान मेरा रक्षक है। लेकिन कर्म, भगवान के बच्चे गुस्सा करेंगे? बताओ, कोई गुस्सा करना चाहता है? नहीं। लेकिन कहां से मिलता है गुस्सा? गुस्सा कहां से आता है? वो अपने को शरीर समझते हो, आत्मा भगवान का संतान है, शरीर नहीं, खुदा का बंदा आयो, आत्मा नूर, वो खुदा का भगवान का बच्चा है, शरीर नहीं, शरीर भगवान का नहीं, मिट्टी से बना हुआ है। तब कहते हिंदू मुस्लिम सिख हम एक है, शरीर के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि आपके इस इंस्टीट्यूशन में मुस्लिम क्रिश्चियन है? हां, सभी धर्म वाले हैं, क्योंकि यहां शरीर के लिए ज्ञान नहीं है, ये रूहानी सत्संग है, सभी आत्माओं के लिए है। हॉस्पिटल में जाओ, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सभी के लिए डॉक्टर दवाई है। तो ये आत्माओं के लिए दवाई है, भगवान आत्माओं का बाप है, डॉक्टर है। तो यहां मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, पारसी भी है, ये शरीर के, किसने सफेद कपड़े पहने, किसने रंगीन पहने, अलग अलग कपड़े हैं, ये शरीर अलग अलग है, आत्मा एक ही ऊपर से आया है। तो भगवान के बच्चे सभी एक है, तो उनको यहां ज्ञान मिलता है। और आत्मा का धर्म है शांति। गुस्सा शरीर के गुण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये शरीर के गुण है। अपने को शरीर समझते हो तो वो गुण काम करते हैं, आत्मा समझते हो तो आत्मा के गुण काम करते हैं। तो चलते फिरते ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा हूं, इस शरीर के द्वारा कर्म करता हूं। जैसे किसी ने सफेद कपड़े पहने हैं, आपको उसको जमीन पर बैठो नहीं, कपड़े काले हो जाएगा, पता है उसको। तो अपने कपड़े की जैसे संभाल करते हो तो ऐसे मन की संभाल करो, किसी को देखकर गलत विचार कर रहे हो, मेरा मन मैला हो जाएगा। मेरे मन को कौन संभालेगा? मुझे ही संभालना है। तो स्वयं पर अटेंशन देना चाहिए। लास्ट
और एक आंसर करेंगे। अच्छा, किसी ने लिखा है मुझे बहुत सोचने की आदत है, आदतों को कैसे खत्म किया जाए?
हाँ, सोचना तो चाहिए, लेकिन क्या सोचना चाहिए? अगर एक माताजी इधर बैठी है, बच्चे घर में है, पति घर में है, यहां आई है, यहां बैठ के सोचे, अरे बच्चों ने खाना खाया कि नहीं है? हाँ, नहीं खाया, क्या आप यहां से भेज सकते हो? नहीं। तो यहां बैठ के सोच के फायदा क्या है? हाँ, मन में विचार आता है, समझाओ, हाँ बच्चे को उधर तैयारी करके रखा है, उनको खिलाने वाला है, ठीक है, मां होने के कारण बच्चों की याद आना संभव है। तो अपने आप को समझाओ, नहीं अब ये सोचना नहीं, भगवान के बच्चे मेरे नहीं, तो वो अपने संभाल, मैंने सब तैयारी करके आई हूं। तो अपने मन को बहुत सोचने के लिए नहीं दे दो, समझा के कंट्रोल करो। तो स्वयं के पर नियंत्रण चाहिए, तो क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए? मन चंचल है, तो चंचल मन को कौन समझाएगा? बुद्धि है। जो रोज ज्ञान और ध्यान करते हैं, जिनके पास शक्ति भी है, ज्ञान भी है, मन में गलत विचार आते पता चलता है, तुरंत अपने आप को समझाते हैं, नहीं ये नहीं सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक। दूसरा, आप अकेले बैठे हो, घर में खाना बना रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, 10 साल पहले किसी ने बहुत परेशान किया था, आज वो सामने नहीं है, आप खाना बनाते कर्म करते करते उसकी याद आ जाती है, देखो 10 साल पहले उसने कितना परेशान किया। हाँ किया था, लेकिन वो कौन? शिव बाबा, वो आपका बच्चा है, आप उसको सुधारो, आप उसको शांति की शक्ति दे दो। तो उसको मन ही मन में उसके प्रति शुभ सोचो, उसने ये किया था, उसने वो किया था, वो सोचेंगे तो उसने 5 मिनट गुस्सा किया था, आपने 25 मिनट उसको बढ़ाया, तो और कर्म बंधन बढ़ जाता है उसको खत्म करने के बदले। तो जितना आप गलत सोचते हो उतना बीमारी बढ़ती है। इसलिए थॉट इज रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीजेस, सारी बीमारियों का कारण है मन। तो मन के शुद्ध विचार सुनना चाहिए। उसके लिए एक उपाय बताता हूं, अगर एक ही हफ्ता आप करके देख लो, रोज अगर आप आश्रम में जाते हो, आपका प्रश्न है, आप पूछना चाहते हो, हाँ तो मैं विचार है, बहुत प्रश्न है, 10 बज गए बाकी व्यवस्था को देखते हुए, कल सवेरे 10 से 11 बजे तक मेडिटेशन हॉल में, वहां मिलेंगे हम।
मेडिटेशन हॉल नहीं,
कौन सा, दादी मीटिंग हॉल,
दादी
मीटिंग हॉल इसके पीछे ही है। कल 10 बजे उधर आ जाओ, जो भी रहने वाले हैं तो उनका हम क्लास करेंगे, जो भी प्रश्न थोड़े होंगे प्रश्नोत्तर भी करेंगे, जिसको कुछ पूछता हो सब कुछ पूछ सकते हैं कल 10 बजे को। अभी क्या समय देखना चाहिए, हमारे बाकी लोग सभी है, सभी व्यवस्था है, जहां आप मकान में जाएंगे ट्रांसपोर्ट सभी व्यवस्था डगमग हो जाती है, उसके 10 बजे
सभी बैठे रहिए,
ठीक है, समझ में आया। तो इसके लिए ये जानना चाहिए, एक रोज अगर जहां भी आप जाते हो, यहां से जाने के बाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सवेरे 7 से 8, नहीं तो शाम को 7 से 8, जहां भी जाओ नजदीक 1 किलोमीटर के अंदर सब जगह पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, और सवेरे मुरली क्लास चलता है ज्ञान, वहां जाके 5 मिनट ज्ञान सुनो, एक मुरली के पॉइंट महावाक्य सुनकर लिखकर अपने जेब में रखना, सुना हुआ भूल जाता है, जेब में रखो। सारा दिन में शरीर को देखो, 3 दफा खाना खिलाते हो सवेरे दिन में रात को, शरीर को खिलाते हो आत्मा को, ये ज्ञान भोजन है। जो एक पॉइंट आपने लिख के रखा 3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, खाना खाने बैठते ही 2 हाथ दिया, ये हाथ इधर जा रहा है, ये हाथ जेब में, मुझे क्या कहा था आज गुस्सा नहीं करना चाहिए, बस हो गया। दिन में खाना आते ही हाथ इधर जाता है, ये हाथ जेब में डालने दो, ढूंढने जाना नहीं। रात को खाना आते ही अपने आप को शुभ विचार अगर देने लग जाएंगे आप, तो मन धीरे 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 शांत होता जाएगा, शुभ विचार करने लग जाएगा। अशुभ विचार फास्ट चलते हैं, नेगेटिव बहुत तीव्र गति से चलता है, शुभ विचार धीरे धीरे चलते हैं, तो अपने आप मन शांत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। ओम शांति।
ओम शांति। एक प्रश्न, वैसे दादी जी कहते हैं 10 करो बस, अभी सुबह 4 बजे भी आपको आना है, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। एक बच्चे ने पूछा है, क्या हमारे माँ बाप हमेशा राइट होते हैं, जो कहते हैं क्या हमेशा राइट है?
हाँ बहन जी समझते, बच्चों का भी कुछ प्रश्न सुनाना चाहिए, हाँ बच्चों का भी अधिकार है। तो माँ बाप बच्चों के अच्छाई के लिए बताते हैं, माँ बाप अनुभवी है और बच्चे माँ बाप पर डिपेंड है, तो बच्चों को माँ बाप का सुनना चाहिए, तो वो उसका कल्याण के लिए कहते हैं, गलत होने के लिए उनको दुख मिलना चाहिए इसके लिए नहीं कहते हैं। तो इसके लिए बच्चों को सदा माँ बाप ने कुछ भी कहा पहले हाजी करना चाहिए। अगर बच्चे पढ़े लिखे बड़े भी हो गए, माँ बाप गलत बोल रहे हैं, तो भी पहले हाजी बोलो, फिर 5 मिनट के बाद पप्पा यह ऐसा नहीं है, यह ऐसा है। पहले अगर आप ऐसा नहीं ऐसे कहते हो, बाप से बेटा सवा शेर हो गया है ना, बाप को भी पढ़ाना चाहता है, तो ये काम नहीं करना चाहिए। तो बड़ों का इज्जत रखना, रिस्पेक्ट रखना, ये भारत की सभ्यता है। तो बड़े हैं कितना भी हो, हम बड़े लिखे हो गए लेकिन वो बड़े हैं, हाँ जी करो, फिर 2 मिनट क्या, पप्पा ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, तब पप्पा मम्मी सुनते हैं बच्चा क्या कह रहा है। तो इसके लिए बच्चों को ये ध्यान देना चाहिए सदाई, माँ बाप ने कुछ भी कहा पहले हाँ जी, ये करना सीखना, ये सभ्यता है। फिर भी अगर आपको कुछ ठीक नहीं लगा तो आप अपना राय दे दो जरूर, ऐसे नहीं गलत को भी हाँ करके चलो, पहले हाँ करो, 5 मिनट के बाद अगर आपको लगता ये ऐसा नहीं ये ऐसा है तो राय दे दो जरूर, बाद में देना चाहिए, ये व्यवस्था है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामनाथ भाई जी, आप सभी एक हाथ के ताली से भाई साहब का धन्यवाद करेंगे। बहुत सुंदर रूप से आंसर्स दिए। सभी बैठ
एक मिनट बैठ करके भगवान को धन्यवाद देंगे ना, शिव बाबा को याद करके फिर बाबा के याद में जाके सो जाना।
तो सभी बैठेंगे, प्यार से बाबा को याद करेंगे और कल सुबह 4 बजे आप सब यहाँ पर योग करने के लिए पधारेंगे। ओम शांति।
कल का अनाउंसमेंट बाद में कल करेंगे।
खुशी रहो।